الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. اس سورت کا نام سورة البروج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 22 آیتیں ہیں سورہ والشمس وضحاها کے بعد, اور سورہ والتین سے پہلے 27 نمبر کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والی آسمان کی قسم کھائی ہے, برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے. اس لیے اس کا نام سورۃ البروج ہوا ہو یہ سمجھ کے اندر آتا ہے. یہ بروج اور برج ہے کیا چیز, وہ بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے. برج عربی کے اندر اونچی عمارت کو کہتے ہیں, اونچے محل کو کہتے ہیں. اسی لیے سب لوگ جو ہے نا گھومنے جاتے ہیں برج الخلیفہ, برج دبئی دیکھنے کے واسطے. تو برج اونچی عمارت, اونچا محل. اور یہاں آیت میں کیا مراد ہے؟ آسمان کے بڑے بڑے ستارے مراد ہے جن کی اللہ تعالی آسمان کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں. نمبر دو, بڑے بڑے محل مراد ہے. یہ بڑے بڑے محل آسمانوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں, اور اس میں آسمان کا پیرا دینے والے فرشتے بیٹھتے ہیں. آسمان کی چوکی داری سیکیورٹی کرنے والے فرشتے وہاں پر بیٹھتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جو آج کل کی وگنان کی باتیں اس میں شامل کرتے ہیں, اگرچہ وہ بات کوئی خاص پکی نہیں ہے, کہ 12 برج سے مراد یہ ہیں کہ آسمان کے اندر 12 حصے ہیں. جیسے آپ نے خربوزہ سکر ٹیٹی دیکھی, اس میں الگ الگ فانک ہوتی ہے, قدرتی چیری بنی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح آسمان کے اندر بھی 12 الگ الگ منزلیں ہیں. سورج ہر منزل کو ایک سال میں طے کرتا ہے. گویا آسمان میں پورب سے لے کر پچھم تک میں 12 حصے ہیں, اور سورج اس کو پورے سال کے اندر جو ہے طے کر لیتا ہے. اس برج والے آسمان کی اللہ تعالی نے قسم کھائی سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر. والیوم الموعود, اور اس قیامت کے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے. وشاہد ومشہود, اور اس کی جو حاضر ہوتا ہے, اور اس دن کی جس میں حاضری ہونی ہے. دوسرا ترجمہ, اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے. شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن, چونکہ جمعہ کا دن ہر جگہ حاضر ہوتا ہے, ہر جگہ آتا ہے, اور ہر جگہ بڑی بڑی بستیوں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے. اور مشہود سے عرفات کا دن مراد ہے, جس میں پوری دنیا سے حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایسا بھی کہتے ہیں कि शाहिद से मुराद इंसान है और मशहूद से मुराद कयामत का दिन है, इसलिए कि कयामत के दिन हर इंसान अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाएगा। इसी तरीके से यूं भी कहते हैं कि शाहिद यानी गवाह और मशहूद यानी जिसके लिए गवाही दी जाए, कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के ईमान की और ईमान वालों के नेक काम की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। और ये बात कुरान में भी मौजूद है, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, ये भी कहा गया है कि शाहिद अल्लाह ताला है और मशहूद अल्लाह की तमाम मखलूक है, अल्लाह की तौहीद है। और कुरान में मौजूद है, वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ताला गवाही देने के लिए काफी है। और ये भी कहते हैं कि शाहिद से इंसान के बदन के आजा अवयव अंग मुराद है और मशहूद से खुद इंसान मुराद है। अल्लाहु अकबर, इंसान के आजा कयामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। कुतिल अस्हाबुल उखदूद, खंदकों वाले मारे गए। ये अजीब एक किस्सा है जो मैं पूरा आपको इंशाल्लाह सुनाता हूं। अन्नारी दातिल वकूद, यानी बहुत से ईंधन की आग वाले। इदहुम अलैहा कुऊद, जिस वक्त वो खंदक खोदने वाले उस आग के आसपास बैठे थे। وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ, اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے, یعنی ایمان والوں کو آگ کی کھائی میں ڈال رہے ہیں اور ظالم لوگ یہ تماشا اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الحميد, اور وہ خندق کھودنے والے ان ایمان والوں کو صرف اس وجہ سے سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے جو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست تمام خوبیوں والے ہیں۔ یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں, اور ان خندق کھودنے والوں نے ان ایمان والوں میں صرف یہی قصور دیکھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو بڑے زبردست خوبیوں والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو جو سزا دی گئی وہ محض ایمان کی وجہ سے سزا دی گئی اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تین بڑی بڑی خوبی بیان کی گئی, العزیز بڑے زبردست, الحمید تمام خوبیوں والے, نمبر تین آسمان اور زمین میں انہی کی سطح اور حکومت ہے۔ یہ تینوں خوبیوں کا تقاضا یہ ہیں کہ اسی ایک اللہ پر ایمان لاوے, لیکن یہ تو ایمان لانے والوں کو سزا دے رہے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, جس اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, یقیناً جن لوگوں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو فتنہ بنایا, فتنے میں ڈالا, نشانہ بنایا, تکلیف پہنچائی, پھر انہوں نے توبہ نہیں کی तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए आग में जलने की सजा है। इन्नल्लदीन आमनु वामिलुस्सालिहात लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो उनके लिए ऐसे बागात है जिनके नीचे से नहरें बहती होगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हक सच्ची कामयाबी जन्नत मिल जावे, अल्लाह आपको मुझे सबको अता फरमावे, अपने फजल से अता फरमावे। इन बतश रब्बिका लशदीद, यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, वही अल्लाह ताला पहली मर्तबा भी पैदा करते हैं और कयामत में भी दोबारा पैदा करेंगे। वहुवल गफूरुल वदूद, वही अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। दुल अर्शिल मजीद, अल्लाह अर्श के मालिक है, बड़ी शान वाले हैं। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहते हैं उसे अल्लाह कर ही डालते हैं। हल अताका हदीथुल जुनूद, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन लश्करों का किस्सा पहुंचा, वाकिया पहुंचा। फिरऔन व समूद, फिरऔन और समूद कौम का। बलिल्लदीन कफरू फी तकदीब, बल्कि उन सब का बुरा अंजाम सुन लेने के बावजूद भी काफिर लोग नबी के झुठलाने में लगे हुए हैं। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह ताला उनको सब तरफ से घेरे में ले लिया है, और अल्लाह ताला ने उनको हर तरफ से घेरे में ले लिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने सब तरफ से उनको घेरे में ले लिया है। ये वरा है ना, जो चीज किसी दूसरी चीज पर छा जावे उसको भी कहते हैं। आगे का माना भी आता है, इसीलिए ये माना इसका यहां आयत के अंदर लिया गया कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम तरफ से घेरे में लिया है, कोई अल्लाह की पकड़ से छूट नहीं सकता। बल हुवा कुरआनुम मजीद, उन काफिरों के झुठलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो एक बड़ी शान वाला कुरान है। फी लौहिम महफूज, जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। एक हदीस सुना दो, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर की नमाज में वस्समा इदातिल बुरूज वस्समा इवत्तारिक और उसके जैसी सूरतें पढ़ा करते थे। गोया कि ये बड़ी सूरतों में से हैं जिसको ऐसी नमाज में पढ़ा जाता है। अब इस सूरत का पहले हम शाने नुजूल समझते हैं, उसके बाद इस सूरत में एक अजीब और गरीब किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया, वो किस्सा हम लोग देख लेते हैं। हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर थे, हिजरत नहीं की थी, तो काफिरों ने मुसलमानों को सताया, बहुत तकलीफ दी। मुसलमानों ने अपनी तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तसल्ली दी, समझाया, घबराओ नहीं, अनकरीब वो टाइम आने वाला है कि जब अल्लाह ताला तुमको इन काफिरों से बदला लेने की ताकत देंगे, फिर उस वक्त ये लोग तुम्हारे सामने ऐसे होंगे जिस तरह आज तुम हो, यानी तुम ऊपर होंगे, ये तुम्हारे हाथ के नीचे होंगे। ये हुजूर ने सहाबा को समझाया। जब मक्का के काफिरों ने ये बात सुनी तो वो मजाक उड़ाने लगे और मजाक उड़ा के कहने लगे, ये मुसलमान सहाबा मुफलिस जलील, कभी इनके पास ऐसा टाइम आएगा कि वो हमसे बदला ले सकेंगे, हमारे से बदला लेने की ताकत हासिल करेंगे? हम अगर अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले न होते तो हमको उन पर अल्लाह गालिब क्यों करता? हमारे नसीब में इज्जत है, हमारे नसीब में ताकत है, और ये हमेशा मुसलमान जलील और रुस्वा रहेंगे, नऊज़ु बिल्लाह। उस पर अल्लाह ताला ने ये मुबारक सूरत को नाजिल फरमाया और मुसलमानों को तसल्ली दी कि घबराओ मत, एक दिन आएगा। और वो दिन आया और अल्लाह ने मक्का फतह करवाया और पूरा मक्का सहाबा और हुजूर के हाथ में आ गया, जिसका किस्सा इजाजा नसरुल्लाह में आपने सुन लिया है। अब ये अस्हाबुल उखदूद का किस्सा भी जरा सुन लो, जो इस सूरत में बयान किया गया। मुफस्सिरीन ने उसके मिसदाक अलग अलग बयान किए हैं, मैं उसमें से एक रिवायत आपको सुनाता हूं। शाम में, मुल्क शाम सीरिया में एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह, और ये काफिर था, ईमान लाने वाला नहीं था। उस बादशाह के पास एक जादूगर रहता था या ज्योतिष रहता था, और उस जालिम बादशाह की पूरी हुकूमत उस जादूगर और ज्योतिष के ऊपर चलती थी। कैसे जादूगर के ऊपर चलती थी? वो कोई दुश्मन उस बादशाह पर अटैक करे तो ये जादू के जरिए दुश्मन को मार डाले, और अगर अंदर अंदर कोई जो है बगावत हो, बड़वा होए बादशाह के गलत काम की वजह से, तो ये जादूगर अपने जादू के जरिए से उन सब बड़वा करने वालों को, बगावत करने वालों को ठंडा कर देवे और सबको उसका ताबे बना देवे। गोया के पूरी सत्ता, पूरी सरकार उस बादशाह की जादूगर के ऊपर चलती थी, और या काहिन था, ज्योतिष था, उसके ऊपर चलती थी। अब धीरे 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 ये जादूगर बुढ़ा हो गया, तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, कोई होशियार लड़का मुझे दे दो जिसको मैं जादू का फन सिखला दूं, ताकि मैं मर जाऊं तो भी जो है आपकी ये सत्ता सरकार हुकूमत चलती रहे। तो बादशाह ने एक होशियार लड़का पसंद किया अपने गुलामों में से और जादूगर को दे दिया कि लो इसको जादू सिखाओ, और उस लड़के को ऑर्डर कर दिया कि सुबह शाम रोजाना जादू सिखा करो। अब ये लड़का रोजाना जादू करके घर आने जाने लगा, जादू सीखने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में आते हुए उसने देखा कि एक बहुत सारे लोग एक मकान से निकल रहे हैं, कोई घर था उसमें से बहुत सारे लोग निकल रहे थे। तो इस बच्चे ने पूछा कि इस घर में कौन रहता है कि इतने सारे लोग निकल रहे हैं? तो बताया गया कि यहां एक बड़े मौलाना रहते हैं, राहिब पादरी, चूंकि उस जमाने में ईसाई मजहब था और उस जमाने में वही ईसाई मजहब हक मजहब था। तो और ये वाकिया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 70 साल पहले का वाकिया है, 70 साल पहले का वाकिया है। उस जमाने में दुनिया में ईसाई मजहब आम था और वही सच्चा मजहब था। तो कहा इसमें ईसाई मजहब के एक बड़े मौलाना राहिब साहब रहते हैं, लोग उनकी बात और बयान सुनने के लिए जाते हैं और निकलते हैं। तो उस लड़के को भी हुआ कि मैं भी जाऊं मौलाना राहिब साहब की बात सुनने के लिए। तो लड़का गया उस राहिब पादरी की बात सुनने, तो उसके दिल पर इतना असर हुआ कि उसको मजा आ गया। इसलिए कि जादू जादू है, ढोंग ढोंग है, बनावट बनावट है, और इस राहिब के पास, पादरी के पास अल्लाह की बातें थी, आसमानी किताब इंजील की बातें थी, इसलिए बच्चे को मजा आ गया, बड़ा मिठास लगी। तो वो रोज इस राहिब के पास, पादरी के पास जाता था। और कैसे जाता था कि सुबह में घर से निकले जादूगर के यहां जाने के लिए, तो सुबह में भी राहिब के पास बैठे, और शाम को जादूगर के यहां से निकले तो रिटर्न में भी राहिब के पास बैठे। अजीब, इस बच्चे ने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया, और धीरे धीरे जादू में से उसका दिल उठने लगा, और इस राहिब और पादरी की बात में उसको मजा आने लगा। अब ये जादूगर के पास सुबह में देर से जावे तो जादूगर उसको डांटे, क्यों देर से आता है। और उसने बादशाह को भी फरियाद की कि ये लड़का बहुत देर से आता है, सुस्ती करता है। तो बादशाह ने ऑर्डर किया कि इस बच्चे पर ध्यान दो, रोज जावे बराबर सुबह में, जल्दी जावे। तो लोगों ने कहा कि ये तो सुबह में जल्दी निकल जाता है, फिर बीच में रुकता कहां है, बैठ कहां जाता है। फिर शाम को जादूगर के यहां से निकलता है तो राहिब के पास, पादरी के पास बैठ जाता है, तो घर देर से पहुंचता है तो घर वाले डांटते कि तू कहां खेलता रहता है, देर से आता है घर से। मालूम हुआ कि बच्चों के मिजाज में ऐसा ही है, वो इधर उधर कर देते हैं, माँ बाप को, मदरसे वालों को, स्कूल वालों को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कितने बजे घर से निकला, कितने बजे मदरसे पहुंचा, मदरसे से कितने बजे निकला, घर कितने बजे आया, स्कूल कब गया, कब पहुंचा, कब निकला, कब आया, पूरे टाइम टेबल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, माँ बाप को, घर वालों को, स्कूल वालों को, मदरसे वालों को। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने समझा कि ये खेलने लग जाता होगा, तो उसको धमकी दी, डांटा, क्या आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दरमियान जो है एक अजीब किस्सा हो गया, बहुत ध्यान से सुनो। ये लड़का अपने घर से निकला, रास्ते में एक बहुत बड़ा अजदहा, अजगर, ड्रैगन है, कोई जंगली जानवर है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता चौकअप है, बंद है, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, कोई रास्ता जो है पार नहीं कर सकता, सब इस अजगर से, इस जंगली जानवर से डरते हैं, और लोगों की भीड़, रास्ता बंद, ट्रैफिक जाम। तो इस लड़के के दिल के अंदर एक ख्याल आया, सुभान अल्लाह, क्या ख्याल आया। उस लड़के ने कहा कि आज मैं जरा परीक्षा ले लो, इम्तिहान ले लो, कि जादूगर जिसके पास मैं जादू सीखने के लिए जाता हूं, वो सच्चाई पर है या हक पर है या नहीं है, या जिस राहिब के पास, पादरी के पास मैं जाता हूं, जो मुझे इंजील की बातें सुनाते हैं, वो हक पर है या नहीं है, आज इम्तिहान ले लूं, परीक्षा ले लूं। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर लिया हाथ में। अब बच्चा कितना पत्थर उठावे, और दुआ की, क्या दुआ की, ए अल्लाह, अगर राहिब का, पादरी का दीन, मजहब जादूगर से अच्छा है तो इस अजगर को, अजदहे को हलाक और बर्बाद कर दो और पब्लिक को छुटकारा दे दो। ये कहकर उसने अजगर के ऊपर पत्थर फेंका, जैसे ही वो पत्थर लगा तो इतना बड़ा जंगली जानवर अजदहा मर गया। जब ये मर गया तो बहुत बड़ा मजमा जो वहां था, ये मंजर देख करके उस लड़के को खूब मुबारकबादी दे रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं, और कहने लगे कि ये बच्चा अब बड़ा जादूगर बन गया, इसने भी बड़ा जादू सीख लिया है। ये बात राहिब को पादरी को भी पहुंच गई। उस राहिब ने उस लड़के को तन्हाई में एकांत में बुलाया और कहा, बेटा अल्लाह ताला ने तुमको इतना ऊंचा मर्तबा दे दिया है मुझे खूब मालूम है, लेकिन बेटा अब तेरे ऊपर जो है हालात आएंगे, तकलीफ आएगी, लेकिन याद रखना बेटा तू मेरा नाम किसी को मत बतलाना कि मैं तुझको ये आसमानी किताब इंजील की बात सिखाता हूं, किसी को मत बताना, छुपा छुपा के रखना। तो उसने कहा, उस्ताद आप इत्मीनान से रहो। और ये लड़का बड़ा वली बन चुका था उस राहिब और पादरी के पास जाने की बरकत से, यहां तक के कोड़ वाले आते, मां के पेट से निकले हुए अंधे आते तो उनको भी ये बच्चा दवा दुआ के जरिए से ठीक कर देता था। बड़े बड़े डॉक्टर जो इलाज नहीं कर सकते, ये बच्चा उनको दवा देता था, दुआ देता था, अच्छे हो जाते थे। चूंकि ये सब हजरत ईसा अलैहिस सलाम के चमत्कार है। वह उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस सलाम को ये मौजज़े और चमत्कार दिए थे। इस बच्चे के अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस सलाम के तरीके की इत्तिबा की बरकत से ये सब खूबियां आ गई थी। अब बादशाह जो जालिम जादूगर की मदद से जीने वाला, उस बादशाह के दरबार में एक अंधा था। पहले तो उसकी आंख अच्छी थी, लेकिन बाद में वो अंधा हो गया था। वो बादशाह का खास मिनिस्टर था। अब अंधा होने की वजह से बादशाह के दरबार में जाना आना भी बंद हो गया। जब उस आदमी ने सुना कि ये लड़का लोगों को अच्छा कर देता है, तो गिफ्ट लेकर के, तोहफे लेकर के बच्चे के पास गया और दुआ की दरख्वास्त की। बच्चे ने कहा कि शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं, तो ईमान ले आ, बुत परस्ती छोड़ दे और बादशाह को रब मत के, तो मैं अल्लाह से तेरे लिए शिफा की दुआ करूंगा। चूंकि वो बादशाह जो था जालिम, उसका नाम था यूसुफ जू नवास और ये बच्चे का नाम था अब्दुल्ला इब्ने तामुर। वाह वाह, ये लड़के ने कितनी प्यारी बात कही कि ये यूसुफ जू नवास बादशाह जो अपने आप को रब और खुदा कहता है, उसको रब मानना छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे शिफा दे देंगे। तो वो अंधा हो गया था बेचारा, उसने फौरन एक अल्लाह पर ईमान कबूल किया। ये बच्चे अब्दुल्ला ने दुआ कर दी और उसकी आंखें फौरन अच्छी हो गई। जैसे उसकी आंख अच्छी हो गई तो फौरन बादशाह के दरबार में गया। बादशाह हैरान कि तेरी आंख अच्छी करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने दवा की, लेकिन तू अच्छा नहीं हुआ, अब तू कैसे अच्छा हो गया? तो उसने कहा कि मेरे रब ने शिफा दे दी। तो बादशाह यूसुफ जू नवाज कहता है कि तेरा रब कौन है? तेरा रब तो मैं हूं, मैं खुदा हूं। वो कहते हैं, नहीं नहीं, तू तो बादशाह है, तू खुदा नहीं है। उसने कहा, नहीं मैं ही रब हूं। जब ये नहीं माना तो उसको मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसने बेचारे लड़के का नाम बतला दिया कि वो लड़का जो है ना अब्दुल्ला बिन तामुर, जिसको आप जादू सीखने के लिए भेजते हैं, उसने मुझे शिफा दे दी। तो बादशाह ने अब्दुल्ला को बुलाया और बादशाह ने पूछा कि मैंने तुझे जादू सिखलाया, जादू सिखाने के लिए जादूगर के पास भेजा, अब जब तू इतना बड़ा जादू सीख गया, अंधों को अच्छा करने लगा, तो तू एक अल्लाह की इबादत की दावत देने लगा और मुझे रब मानने से लोगों को मना करने लगा। खूब डांटा, खूब डांटा। उस लड़के ने हिम्मत से कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह हो लेकिन रब अल्लाह है, जिनके हाथ में शिफा है। बादशाह ने उस लड़के को बहुत सजा दी, बहुत सजा दी और यूं कहा, अब समझ में आ रहा है कि वो जादूगर के यहां देर से जो जाता था तो कहीं ये जाता होगा और वहां जाकर उसका अकीदा खराब हो गया, ये बादशाह ने कहा। वो जादूगर जो बुड्ढा हो गया था, इस बच्चे का उस्ताद, वो भी बादशाह के दरबार में आया और आकर फरियाद करने लगा कि ये लड़का बहुत दिन से जादू सीखने नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। लोग कहने लगे कि तो सुबह जल्दी जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। अब बादशाह ने उस बच्चे को अब्दुल्ला बिन तामूर को मरवाया, सपाटे मरवाए, पिटाई करवाई, यहां तक कि उस लड़के ने उस राहिब का पादरी का नाम बतला दिया। हालांकि उस्ताद ने कहा था मेरा नाम मत बतलाना, लेकिन नाम बतला दिया। बादशाह ने पादरी को बुलाया और बुला करके कहा कि तू ईसाई मजहब छोड़ दे, वरना आरा यानी करवती जो लकड़ा काटने की होती है वो लाकर तुझे चीर दूंगा। बादशाह राहिब कहने लगा मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना हो कर। तो उस बादशाह ने उस पादरी के सर के ऊपर आरा रखा, करवती रखी, और उस पादरी को जिंदा दो टुकड़े करवा डाले। अल्लाहु अकबर। और वो अंधा जो अच्छा हो गया था उसको भी कत्ल करवा दिया। अल्लाह अल्लाह, ईमान के लिए इन्होंने जान दे दी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। कितना मजबूत ईमान होगा अंदाजा लगाओ। अल्लाह ताला हमें आफियत से रखे। अब उस लड़के को समझाना शुरू किया कि बेटा ईमान छोड़ दो। उसने कहा मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। कहा बेटा ईमान छोड़ दो। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बादशाह ने ऑर्डर दिया कि इसको पहाड़ पे ले जाके फेंक दो, पहाड़ पर से नीचे, ताकि उसकी बोटी बोटी हो जावे। जब लोग उसको पहाड़ पर लेकर के गए, बादशाह के सिपाही लोग, पुलिस वाले, तो उस लड़के ने दिल दिल में अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इनकी शरारत से तू मेरी हिफाजत फरमा। उस लड़के ने दुआ की और फौरन पूरा पहाड़ हिलने लगा। ऐसा हिला, ऐसा हिला कि बादशाह के जितने सिपाही वाले गए थे सब मर गए, हलाक हो गए, और वो लड़का सही सलामत दरबार में आ गया। बादशाह देखकर हैरान, अरे वो सिपाही लोग कहां गए, तुझे लेके गए थे वो? तो कहा मेरे अल्लाह ने इन सब को खत्म कर डाला और मुझे जिंदा बचा लिया। तो बादशाह ने अब हुक्म दिया पुलिस वालों को, इसको है ना एक कश्ती में ले जाओ और दरिया में ले जा करके डुबो दो। लेकर के गए दरिया में, दूसरे पुलिस वाले गए। जब दरिया के बीच में गए, अब उठा के बच्चे को डालने वाले थे, तो बच्चे ने अल्लाह से दुआ मांगी, हे अल्लाह इनकी शरारत से मेरी हिफाजत फरमा। तो एकदम पूरी कश्ती उलट गई और सब लोग डूब गए और ये लड़का सही सलामत बाहर आ गया। देखो अल्लाह ताला की कुदरत। सही सलामत आके बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह को जाके पूरा किस्सा सुनाया कि बादशाह वो तो सब डूब गए और मेरे अल्लाह ने मुझे जमा जिंदा पहुंचाया। देख अल्लाहु अकबर। फिर ये बच्चे ने एक अजीब बात कही, देखो कितना होशियार बच्चा होगा। बादशाह को बच्चा यूं कहता है कि बादशाह तू मुझे मार डालना चाहता है, तो मैं जो कहूं ऐसा तू कर तो मैं कत्ल हो जाऊंगा, ऐसे तो तू मुझे कत्ल नहीं कर सकेगा। तो बादशाह एकदम खुश हो गया कि तुझे ही तो कत्ल करना है। तो कहा पूरी पब्लिक को मैदान में जमा कर, पूरे शहर वालों को, और मुझे फांसी पे लटका और एक तीर चलाने वाले को बुला और मैं एक छोटी सी एक कलमा बतलाता हूं, वो एक कलमा पढ़ के मेरे ऊपर तीर चला तो मैं मर जाऊंगा। तो बादशाह तो खुश हो गया, पूरे शहर के लोगों को मैदान में जमा किया, एक तीर चलाने वाले को बुलाया और लड़के को ऊंचा खड़ा किया और लड़के ने बतलाया कि यूं पढ़ के तीर चलाओ, बिस्मिल्लाहिर्रब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब अल्लाह के नाम से मैं तीर चलाता हूँ। ये पढ़कर के तीर चलाओ तो मुझे तीर लगेगा, मैं मर जाऊंगा। ध्यान से सुनो मुसलमानों, इस बच्चे ने जान दे दी लेकिन ईमान की दावत दे दी। कितना होशियार बच्चा होगा। अब तीर चलाने वाले ने बिस्मिल्लाह रब्बल गुलाम पढ़ के तीर चलाया तो ये कान पट्टी के ऊपर तीर चला और बच्चा वहीं शहीद हो गया। तो पूरे मजमे को यकीन हो गया कि ये बच्चा जिस अल्लाह की दावत देता था वो अल्लाह सही है। इसलिए कि पहाड़ पर पुलिस वाले ले गए, सब पुलिस वाले मर गए। कश्ती में ले गए, सब पुलिस वाले डूब के मर गए। लेकिन इस बच्चे ने जो कहा कि अल्लाह का नाम लेके तीर मारो, देखो ये बच्चा शहीद हो गया। मालूम हुआ कि अल्लाह हक पर है तो पूरे मजमे में सब लोग ईमान ले आए। आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब अल्लाह पर हम ईमान लाते हैं। शहीद हो गया लेकिन हजारों इंसानों के लिए ईमान का जरिया बन गया। अब बादशाह को समझ में आया कि ये तो हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। इधर सारे शहर में फैल गई बात कि लड़का का दीन सच्चा है, उसका रब सच्चा है, उसके रब सच्चे हैं। तो और पूरे शहर में ईमान 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 का चर्चा हो गया, ईमान फैल गया, सब लोग ईमान लाने लगे। तो ये जालिम बादशाह यूसुफ ज़ुनवास जो काफिर था वो बहुत गुस्से में भड़क गया और उसने शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी खंदक खुलवाई, उसमें आग लगवाई और तमाम ईमान वालों को पकड़ पकड़ के आग में डालने लगे, सबको आग में डालना शुरू किया। इतने में एक औरत का नंबर आया जो ईमान वाली थी, अजीब, उसकी गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था। जब उस औरत को आग में डालने के लिए लाए तो वो अपने बच्चे की वजह से जरा हिचकिचाने लगी, अपनी जान के लिए नहीं अपने बच्चे के लिए, तो पीछे हट गई। बादशाह के पुलिस वाले यूं समझे कि औरत ईमान छोड़ देना चाहती है, इसलिए वो पीछे हट गई। इतने में अजीब अल्लाह की कुदरत, वो दूध पीता मासूम छोटा बच्चा, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी और वो बच्चा बोला कि ए मेरी मां, ए मेरी मां, तू सबर कर, तू सच्चे दीन पर है, अल्लाह का नाम लेकर आग में कूद जा, तेरे लिए ये आग जन्नत का बागीचा बन जाएगी। वो बच्चा बोला और ये सुनते ही मां अपने बच्चे को लेकर के आग में कूद पड़ी। सुभान अल्लाह। ये एक रिवायत में है कि जितने ईमान वालों को आग में डाला जाता था अल्लाह का फरिश्ता आकर के इनकी रूह पहले कब्ज कर लेता था, इसीलिए इनको आग की तकलीफ नहीं होती थी। खाली उनके मुर्दे बदन आग में गए और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। और फिर ये जो आग जो खाई में खंदक में भरी हुई थी वो वहां से बाहर निकली और वो जो यूसुफ ज़ुनवास जालिम बादशाह और उसकी पब उसके फौज वाले पुलिस वाले जो चारों तरफ बैठ के ईमान वालों को आग में डाल रहे थे, वो आग बाहर निकली और बाहर निकल करके उन तमाम लोगों को जला के राख कर डाला, सबको खत्म कर डाला। ये अल्लाह ताला की तरफ से अजीब और गरीब उन लोगों के ऊपर अजाब आया। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से 70 साल पहले का किस्सा है, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में एक मरतबा इस इलाके में जमीन खोदी गई तो अब्दुल्ला बिन तामूर की लाश निकली, बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए और उनका हाथ अपनी पीठ के ऊपर था, पूठ पर जहां तीर लगा था उसी जगह के ऊपर। तो जो लोगों ने जगह खोदी थी उन्होंने उनका हाथ हटाया तो जहां तीर वाला जख्म था वहां से फिर खून निकलने लगा इतने सालों के बाद। तो फिर हाथ वहां रख दिया तो खून बंद हो गया। और अब्दुल्ला बिन तामूर की लाश के हाथ में एक अंगूठी वीटी थी जिस पर लिखा हुआ था अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरे रब है। उस जमाने में यमन के जो गवर्नर थे उन्होंने खत लिखकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दी। हजरत उमर ने लिखा कि इस बच्चे अब्दुल्ला बिन तामूर को और उसकी अंगूठी को उसी तरह दोबारा दफन कर दो। और जो है इन लोगों को ऐसे खतरनाक अजाब के अंदर अल्लाह ताला ने बिल्कुल हलाक बर्बाद करके तबाह बर्बाद कर दिया। ये अजीब किस्सा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाया। मेरी एक किताब है जिसका नाम है कुरान में आए हुए ख्वातीन के वाकियात, उसमें भी ये वाकिया पूरी तफसील के साथ लिखा हुआ मौजूद है। तीन हिस्सों के अंदर ये किताब मिलती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और आखिरी बात लोहे महफूज के बारे में कह दूं कि लोहे महफूज ये सातों आसमान के भी बहुत ऊपर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में वहां से गुजरे थे, कोई इंसान कोई जिन्नात कोई शैतान वहां जा नहीं सकता। वो तो हुजूर को अल्लाह ने एक इकराम से वहां पहुंचाया और कोई उसमें कमी ज्यादती भी नहीं कर सकता। और ये लोहे महफूज जो है ना सफेद मोती की तरह है, जमीन से आसमान तक जितनी दूरी है इतना लंबा है और पूर्व और पश्चिम जितना लंबा है दुनिया का इतना चौड़ा है। और उसके किनारों के ऊपर याकूत लगे हुए हैं और उसके जिल्द के दोनों पुट्ठे वो लाल याकूत के हैं और नूर के कलम से उसमें कलाम लिखा हुआ है। और उसका एक किनारा अर्श से लगा हुआ है और निचला किनारा एक मुअज्जज फरिश्ते की गोद में है और वो फरिश्ता अल्लाह के अर्श की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है। और उस लोहे महफूज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा दीनुहु अल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु फमन आमन बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व सदक बिवादिही व तबा रसूला अदखलहुल जन्ना अल्लाहुम्म जअलना मिनहुम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के या मकबूल दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाएगा अल्लाह के वादों को सच्चा जानेगा और रसूल की इत्तिबा करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह हम सबको अपने करम और फजल से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए।